समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। 17 अप्रैल बृहस्पतिवार की इस नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर न्यूज मैगजीन आज सवेरे में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज सवेरे के आज के अंक के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं रेणु कटारिया। नमस्कार रेणु।
नमस्कार देवेंद्र, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू डियर लिसनर्स आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेरिन वी विल बी गिविंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 17th of April 2025। But before all this, let's begin with the headlines, Devendra.
जी, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है। केंद्र ने शीर्ष अदालत द्वारा उठाए गए तीन प्रमुख बिंदुओं पर अपनी दलीलें तैयार करने के लिए और समय की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। शीर्ष अदालत आज दोपहर 2 बजे फिर इस मामले पर सुनवाई करेगी। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि वक्फ बाई यूजर को कैसे अस्वीकृत किया जा सकता है, क्योंकि कई लोगों के पास ऐसे वक्फ पंजीकृत कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं होंगे। पीठ ने तीन प्रमुख बिंदु उठाए। न्यायालय ने कहा कि जब तक इस कानून पर सुनवाई हो रही है तब तक वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वे वक्फ बाय यूजर हों या वक्फ बाय डीड। न्यायालय ने कहा कि वह संशोधन अधिनियम के वक्फ संबंधी प्रावधान को भी प्रभावी नहीं होने देगा। इस प्रावधान के तहत संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, इसके बारे में जिलाधिकारी की जांच जारी रहने तक वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। न्यायालय ये आदेश भी देगा कि पदेन सदस्यों को छोड़कर वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। न्यायालय ने सुनवाई के अंत में बहस जारी रखने का फैसला किया। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने वक्फ अधिनियम में संशोधन के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा पर भी चिंता व्यक्त की है।
Union Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal has emphasized that with the development of ports, multimodal logistics and digital platforms like Maitri, India is driving a modern maritime revolution. Addressing the India Middle East Europe Economic Corridor IMEC Conclave 2025 in New Delhi yesterday, Mr. Sonowal highlighted that IMEC is a game changer in global connectivity. He said that IMEC is strengthening connectivity between India, the Middle East and Europe through sustainable and secure trade routes. He further underscored that under Prime Minister Narendra Modi's Mahasagar vision, the government is integrating infrastructure, energy and data to position India as a global maritime power which is anchoring growth, stability and cooperation across regions.
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विकसित होता हुआ बाजार है और विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। कल नई दिल्ली में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आईएमईसी सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत उन देशों के साथ व्यापारिक संबंधों का विस्तार कर रहा है जहां उचित तरीके से समझौते हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायसंगत और संतुलित तरीके से मुक्त व्यापार समझौते की संभावना वाले देशों के साथ भी संबंधों को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि ओमान के साथ पहले से ही चर्चा चल रही है और कुछ और देशों के साथ समझौतों पर बातचीत जारी है।
In the series of programs organized on the 86th Foundation Day of the Central Reserve Police Force, a function is being organized today in Neemuch, Madhya Pradesh. Union Home Minister Amit Shah will be the chief guest of this program, while Chief Minister Dr. Mohan Yadav will be present as a special guest. 8 contingents of CRPF will take part in the CRPF Foundation Day Parade organized at CRPF Group Center in Neemuch. On this occasion, the Home Minister will award gallantry medals to CRPF personnel. Mr. Shah will pay tribute to the brave martyrs of the force at the Shaheed Sthal. He will also interact with the families of the martyrs, parade commanders and jawans.
खान मंत्रालय ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में शोध और प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में एक अहम कदम है जो इस मिशन के लिए अत्यंत आवश्यक है। महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर रक्षा और अंतरिक्ष जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी और रणनीतिक क्षेत्रों के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा और परिवहन के साधनों में बदलाव के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस सिलसिले में अनुसंधान और विकास आवश्यक है ताकि उच्च प्रौद्योगिकी की तैयारी के स्तर तक पहुंचा जा सके। उत्कृष्टता केंद्र कई स्रोतों से मिलने वाले महत्वपूर्ण खनिजों को निकालने की प्रक्रिया और लाभकारी प्रौद्योगिकियों की पहचान, विकास और कार्यान्वयन की दिशा में कार्य करेंगे तथा दिशा निर्देशित अनुसंधान और विकास का संचालन करेंगे। इस नई पहल के अंतर्गत निर्धारित पात्रता के अनुसार जाने माने शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों का मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी जाएगी।
Moving on to the World Trade Organization news, it has predicted, the World Trade Organization, Devendra, yes, has predicted that global trade will fall this year as a result of tariffs by US President Donald Trump. The WTO said this as it released its trade forecast for 2025 and 2026. WTO Director General Ngozi Okonjo-Iweala said in a statement that China-US decoupling is really worrying. She said that WTO currently estimates that merchandise trade between the two economies will fall by 81% and it would have reached 91% without recent exemptions for products such as smartphones. However, severe downside risks exist, including the application of reciprocal tariffs and broader spillover of policy uncertainty, which could lead to an even sharper decline of 1.5% in global goods trade and hurt export-oriented least developed countries. More news, international news, Devendra. Iran's foreign minister Saeed Abbas Araghchi has said that the principle of his country's uranium enrichment is non-negotiable. According to the official news agency IRNA, he made these remarks in an address to reporters on the sidelines of a cabinet meeting yesterday. He was commenting on certain contradictory positions adopted by US officials on Iran's nuclear program and uranium enrichment following the first round of the indirect talks between Tehran and Washington in Oman last week.
जी, और वैश्विक खबरों के बाद बात करते हैं भारत की प्रांतीय राजनीति की। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के संबंध में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन की आज दोपहर बाद पटना में महत्वपूर्ण बैठक होगी। विपक्षी गठबंधन के सभी 6 घटक दल राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में इस बैठक में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार, वामपंथी दलों के वरिष्ठ नेता और विकासशील इंसान पार्टी के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे।
Moving on to some sports news. In shooting, Indian pair of Inder Singh Suruchi and Saurabh Chaudhary clinched gold medal, beating Chinese duo of Quan Xin Yao and Kai Hu by 17-9 in the finals of 10-meter air pistol mixed team event at ISSF World Cup 2025 in Lima, Peru. Earlier, Indian mixed duo of Olympic medalist Manu Bhakar and Ravindra Singh missed out on a podium finish after losing to Chinese pair in the crucial bronze medal match. Today, Raisa Dhillon will be in action in the skeet women's final after she finished 6th in qualification with 117 points. The final clash is scheduled to begin at 1:30 p.m. Indian time.
जी, और अगली खेल खबर आईपीएल से। आईपीएल T20 क्रिकेट में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को रोमांचक सुपर ओवर में हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोनों टीमों का स्कोर बराबर होने के बाद मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। ये आईपीएल 2025 का पहला मैच था जिसका फैसला सुपर ओवर से हुआ है। दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स ने भी 20 ओवर में 4 विकेट पर 188 रन बनाए। सुपर ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम केवल 11 रन बना सकी, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने 2 गेंदे शेष रहते जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। और आईपीएल में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। तो श्रोताओं, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बाद अब हम चलते हैं अपने महानगरों की ओर और जानते हैं चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु से क्या समाचार हैं रेणु के पास।
I'll begin with Chennai Metro, Devendra. The Madras High Court has banned 28 plastic items in the Western Ghats, ranging from the Nilgiris to the Agathiar Biosphere in Kanyakumari district. The banned items include PET bottles, cups, tumblers and plastic films used for food wrapping. A special bench of Justice N. Satish Kumar and Justice D. Bharat Chakravarti said that a deposit return system shall be followed for providing reusable cups, tumblers, food containers, tiffin carriers and even silver bottles to the tourist and general public upon payment of Rs. 20 to Rs. 50, and the amount can be refunded upon returning these items. Moving on to Bengaluru, Karnataka Minister for Infrastructure Development M.B. Patil reviewed the railway projects with the officials of the Southwestern Railways in Bengaluru. He raised the issue of travel time between Bengaluru and Vijayapura and said measures should be taken to reduce the travel time from 14 to 15 hours at present to around 10 hours. While discussing the Gadag-Vijayapura track doubling project, the minister said that after electrification and completion of doubling near Bagalkot, steps could be taken to introduce the Vande Bharat Express service between Vijayapura and Bengaluru. Speaking about the Dharwad-Kittur-Belagavi line realignment, the minister said that the land acquisition process will be expedited to alter the alignment near Mumigatti. He directed the Assistant Commissioner of Chikkodi District to immediately hand over 7 acres of land near Yadavada for another railway project. M.B. Patil informed that 95 acres of land acquisition is still pending for the Tumkur-Chitradurga-Davangere railway route. And the last news that I have is from Hyderabad Metro. Before we move on to Delhi, Mumbai and Kolkata Metros, Devendra, aapke paas?
Ji, Renu.
To Hyderabad se news hai. Telangana Deputy Chief Minister Malu Bhatti Vikramarka said that the state government's clean and green energy push was drawing significant national and international investment. The state government has signed memorandum of understanding with the worth 29,000 crore rupees with 2 private renewable energy companies. The projects are part of the state government's larger goal to produce 20,000 megawatts of green energy by 2030. Speaking at an MOU signing event at the Telangana Institute of Rural Development in Hyderabad, the Deputy Chief Minister said the state recently launched a new clean and green energy policy that has attracted interest among investors. A private company signed an MOU with the state-owned company Telangana Renewable Energy Development Corporation Limited to invest 2,000 crore rupees in setting up compressed biogas projects across 15 districts. These projects using paddy straw as feedstock are expected to provide financial benefits to farmers, especially given the state's large-scale paddy cultivation. EcoRace in Energy India also signed another MOU generating 5,600 megawatt green energy with an investment of 27,000 crore rupees. Aur ab aapke paas chalte hai Devendra to know news about Delhi, Mumbai and Kolkata.
Ji, Delhi ki khabar sabse pehli khabar hai logon se judi hui, logon ke kaam ki hai. Delhi ki mukhyamantri Rekha Gupta ne Rajdhani mein Ayushman Bharat yojana ko lagu karne ke liye कल विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को उनके क्षेत्रों में आयुष्मान कार्ड बनवाने में लोगों की मदद करने का काम सौंपा गया है, जिससे जल्द से जल्द जनता तक कार्ड पहुंच सके। श्रीमती गुप्ता ने शहर में खोले जाने वाले 1,139 आरोग्य मंदिरों के स्थान की पहचान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा बर्बाद किए गए समय के कारण दिल्ली को बहुत नुकसान पहुंचा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि राजधानी में बनने वाले आयुष्मान औषधालय पूर्ववर्ती सरकार के मोहल्ला क्लिनिक से बेहतर होंगे। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली के लोगों को मोहल्ला क्लिनिक और आयुष्मान औषधालय में फर्क नजर आएगा। उन्होंने बताया कि राजधानी की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में हर दिन सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य शहर के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। दिल्ली के श्रम और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने सरकार के न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने वाले निर्णय को ऐतिहासिक बताया। कल एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि इस निर्णय से राजधानी के लगभग 40 लाख कामगारों को फायदा पहुंचेगा। श्रम मंत्री ने कहा कि अब दिल्ली देश में सबसे अधिक न्यूनतम मजदूरी देने वाला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि इससे निजी और सरकारी क्षेत्र में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
लगभग 400 रुपए से लेकर 520 रुपए तक की वृद्धि, ये न्यूनतम मजदूरी में दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदया ने करने का निर्णय लिया है। 40 लाख कामगारों को इससे सीधा फायदा पहुंचने वाला है और दिल्ली देश में लगभग सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी देने वाले राज्यों में से एक राज्य बन चुका है।
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के लिए चल रहे निर्माण कार्य के कारण बारापुला रोड को 16 अप्रैल से 24 अप्रैल तक रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच बंद रखने का फैसला किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने बताया कि यात्री सुचारू आवागमन के लिए आईटीओ, NH24, NH9, सराय कालेखां और DND से महारानी बाग होते हुए लाला लाजपत राय मार्ग तथा एम्स के लिए रिंग रोड का उपयोग कर सकते हैं। और रुख करते हैं मुंबई का। बृहन मुंबई नगर निगम ने आरए कॉलोनी में सड़कों के कंक्रीटीकरण में देरी के लिए जिम्मेदार एक ठेकेदार को अगले 2 साल तक बीएमसी की किसी भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है और उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा 2 अन्य सड़क ठेकेदारों पर भी 20-20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि सड़क निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही या घटिया काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी चेतावनी दी है कि सड़क के कामों में आगे किसी भी तरह की लापरवाही पर ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार का क्षेत्रीय कार्यालय इंडिया टूरिज्म मुंबई आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मैरियट एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट नवी मुंबई के सहयोग से मुंबई के कन्हेरी गुफाओं में सफाई और वृक्षारोपण अभियान का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे होगी सफाई से और इसके बाद वृक्षारोपण समारोह किया जाएगा। महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कल महाज्ञानदीप पोर्टल लॉन्च किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र ने डिजिटल शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देश में जन उपयोगी डिजिटल शिक्षा मंच शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। श्री पाटिल ने कहा कि इस पहल के तहत 1000 विशेषज्ञ प्रोफेसरों को प्रशिक्षित करने का संकल्प है। अब तक 150 प्रोफेसरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप मराठी भाषा में भारतीय ज्ञान प्रणाली पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। ये पाठ्यक्रम पोर्टल पर अपलोड है और ये दुनिया भर के छात्रों के लिए अब उपलब्ध है। महाराष्ट्र में 22 से 25 अप्रैल के बीच राज्यभर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इस संबंध में कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई में मुख्य सचिव सुजाता सोनिक के कक्ष में मंत्रालय में एक बैठक की। बैठक में राज्यभर के सभी जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। ये महोत्सव ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा, खासकर स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ियों और स्कूलों के माध्यम से। और चलते हैं कोलकाता। कोलकाता के ताला प्रत्यय में आज खादी मेले का उद्घाटन किया जाएगा। उत्तर कोलकाता खादी मेला नाम से यह मेला 8 मई तक चलेगा। ये मेला रोजाना दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार श्री चंद्रकांत सिन्हा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। और महानगरों से जुड़ी खबरें हो गई, महानगरों के मौसम का हाल भी अपने श्रोताओं को बताते हैं रेणु
जी।
सबसे पहले दिल्ली के मौसम का हाल। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और तापमान लगातार बढ़ रहा है देश के कई राज्यों में, दिल्ली भी प्रभावित है। 39 डिग्री पारा जा सकता है, गर्मी पड़ेगी। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा और मुंबई में न्यूनतम तापमान 24, अधिकतम 35 डिग्री रहने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तापमान 22 और 34 डिग्री के बीच दर्ज किया जाएगा। बाकी महानगरों में मौसम कैसा रहेगा आप बताइए।
यस, द समर हैज सेट इन देवेंद्र। ऐसा ही हाल साउथ में भी है। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 26 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 21 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज। And Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with possibility of development or thunder lightning. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 39 degrees Celsius.
जी, और अब समय है इतिहास में दर्ज आज के दिन से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं के जिक्र का। आज 17 अप्रैल 2025 है। इंडोनेशिया के सुमबावा द्वीप पर आज ही के दिन 1815 में तंबोरा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिस पर करीब 1,00,000 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। तंबोरा ज्वालामुखी विस्फोट को अब तक का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। इससे निकली राख इतनी ज्यादा थी कि इससे पूरा आसमान काले राख से भर गया था और इसकी वजह से हर तरफ अंधेरा हो गया था। और राख का यह अंधेरा इतना गहरा था रेणु की सूरज की रोशनी भी इसे पार नहीं कर पा रही थी।
वेरी ट्रू। And we move on to the year 1941. On this day, the Office of Price Administration was formed, which handled the rationing of essential commodities. In 1945, on the same day, Gandhiji, in a statement regarding the ensuing San Francisco conference, said that peace is impossible without equality, and freedom of India also demanded a just peace for Germany and Japan.
जी, और 1941 में इससे पीछे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूगोस्लाविया ने जर्मनी के सामने समर्पण किया था। और आज के दिन वर्ष 1946 में सीरिया ने फ्रांस से आजाद होने की घोषणा की थी।
In 1952, on this day, the first Lok Sabha was formed. Anantasayinam Ayangar was elected as the first deputy speaker of Lok Sabha in 1952.
जी,
yes, please carry on.
जी, कुछ और इवेंट हैं जो हमारे श्रोताओं के लिए जरूरी हैं बताना। 1983 में दूसरे रोहिणी उपग्रह को FLV-3 रॉकेट द्वारा पृथ्वी की निकट कक्षा में स्थापित किया गया था और वर्ष 1993 में अंतरिक्षयान STS-56 डिस्कवरी धरती पर वापस लौटा था।
एंड टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे देवेंद्र, वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड हिमोफेलिया डे टुडे एंड दिस डे एम्स टू रेज अवेयरनेस एंड एडवोकेट फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड केयर फॉर ऑल पीपल विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज बाय द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हिमोफेलिया विच एम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल लिविंग विद हिमोफेलिया by advocating for better treatment, care and prevention. और इस साल का थीम है एक्सेस फॉर ऑल, विमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू, हाईलाइटिंग द नीड फॉर ग्रेटर रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट फॉर विमेन एंड गर्ल्स विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हू आर ऑफन अंडर डायग्नोस्ड एंड अंडर डिजर्व्ड।
जी, और अब नमन और स्मरण उन महान लोगों का जिनकी आज जयंती, पुण्यतिथि या जन्मदिन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्मरण कर रहे हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है। शिक्षाविद, दार्शनिक और विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वर्ष 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली और 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्थान पर देश के दूसरे राष्ट्रपति बनने तक उपराष्ट्रपति पद पर सेवा दी। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। शिक्षा जगत में उनके योगदान को नमन करने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के ज्ञानी और विज्ञानी हिंदू विचारक थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। उन्हें एक आदर्श शिक्षक माना जाता है।
एंड देवेंद्र बोलते हैं ना कि हमें अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखना चाहिए और उनके एक्सपीरियंसेस से भी बहुत कुछ गेन करना चाहिए. तो सिमिलरली यू नो देर आर फ्यू कोट्स जो डॉक्टर राधाकृष्णन ने बोले थे, उनमें से एक दो कोट्स मैं अपने लिसनर्स को और आपको सुनाना चाहूंगी. सो द फर्स्ट कोट इज व्हेन वी थिंक वी नो वी सीज टू लर्न. और एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग कोट जो इन्होंने बोला था, If he does not fight, it is not because he rejects all fighting as futile, but because he has finished his fights. He has overcome all dissensions between himself and the world is and is now at rest. We shall have wars and soldiers so long as the brute in us is untamed. G. So we move on to another personality, Ray Edward Cochran, known as Eddie Cochran, was an American rock and roll musician. His songs such as 20, Flight Rock, Summertime Blues, Come On Everybody and Something Else captured teenage frustration. But here we're going to listen to Come On Everybody, which was a 1958 song sung by Eddie Cochran and Jerry Capehart, originally released as a B-side.
Jeans and I'm really gonna spend it right. Well, I've been doing my homework all the week along, and now the house is empty and my folks are gone. Woo, come on everybody.
हिंदी के जाने माने उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार और व्यंग्यकार नरेंद्र कोहली की भी आज पुण्यतिथि है. नरेंद्र कोहली ने संस्मरण, निबंध, पत्र आदि में भी अपनी रचनात्मकता प्रस्तुत की है. साथ ही आलोचनात्मक साहित्य में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई. हिंदी साहित्य में महाकाव्यात्मक उपन्यास की विधा को प्रारंभ करने का श्रेय नरेंद्र कोहली को जाता है. पौराणिक एवं ऐतिहासिक चरित्रों की गुत्थियों को सुलझाते हुए उनके माध्यम से आधुनिक समाज की समस्याओं एवं उनके समाधान को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना कोहली के साहित्य की एक विशेषता है.
And today we are remembering Albert Alec Bowley, who was a South African British vocalist, crooner and dance band guitarist, who was Britain's most popular singer for most of the 1930s. Aur unke bahut popular songs the Midnight, The Stars and You, Goodnight Sweetheart, Close Your Eyes. But here, if one remembers the song Midnight, The Stars and You from the movie The Shining, which was recorded in 1934. So let's listen to this beautiful song, Midnight, The Stars and You.
Midnight and a rendezvous. Your arms.
सुप्रसिद्ध मलयालम साहित्यकार तकाजी शिवशंकरा पिल्लई की आज जयंती है. मलयालम के अग्रणी लेखकों में शुमार तकाजी शिवशंकरा पिल्लई ने अपने लेखन के माध्यम से गरीबों की समस्याओं को समाज के सामने रखा. अपने कहानी संग्रहों में उन्होंने व्यक्ति को अपने समय की विषम परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए प्रस्तुत किया. तकाजी शिवशंकरा पिल्लई के द्वारा रचित उपन्यास चैम्मीन के लिए उन्हें सन 1957 में साहित्य अकादमी और फिर 1984 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
Today is the birthday of Victoria Caroline Beckham, who is an English fashion designer, singer and television personality. She rose to prominence in the 1990s as a member of the pop group The Spice Girls, in which she was nicknamed Posh Spice. With over 100 million records sold worldwide, the group became the best-selling female group of all time. And after The Spice Girls disbanded in 2001, Beckham signed with Virgin Records to release a self-titled debut solo album, which produced two UK top 10 singles. और आपको पता है, Victoria Beckham is married to David Beckham, जो बहुत अच्छे फुटबॉलर थे. And Beckham has also become an internationally recognized style icon and fashion designer. पर यहाँ पे हम उनका एक गाना सुनेंगे, Not Such an Innocent Girl, in a beautiful voice.
भारत भारत के बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी गीत श्रीराम सेठी का भी आज जन्मदिन है। उन्हें गीत सेठी के नाम से भी लोग जानते हैं। वो सुर्खियों में आए वर्ष 1979 में, जब उन्होंने बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों खेलों के जूनियर टाइटल जीत लिए। उस वक्त माइकल फरेरा और सुभाष अग्रवाल बिलियर्ड के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे। गीत सेठी ने कुछ ही समय में सीनियर रैंक में प्रवेश पा लिया। 9 बार विश्व बिलियर्ड खिताब जीतने वाले गीत सेठी को 1992 1993 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अब समय हो रहा है कि हम आप सभी से विदा ले लें न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे से, लेकिन आप लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है।
एंड यस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन डियर लिसनर्स, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।